जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है नाव जर्जर भले हो गई है फिर भी लहरों से टकरा रही हिम्मत भी हारी नहीं इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंज गूंगी ही सही, गाती तो है। पीड़ा मौन शब्दहीन है, परंतु उस पीड़ा में भी एक संदेश छिपा है। हृदय में जो दर्द छिपा है, उस छिपे हुए दर्द में भी एक अज्ञात सा संदेश है, और वो दर्द भी गा रहा है, हर करा बोल रही है कुछ तो। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। माना कि अंधेरा गहरा है, पर हर रात के गर्भ में प्रभात छुपा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जीवन उलझन और समस्याओं से घिरा है, फिर भी अंधेरों से ही होकर रास्ता उजालों की ओर जाता है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाली है, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान से लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो, आकाश सी छाती तो है। संसार की भले कोई उपलब्धियां ना हो, फिर भी आकाश से छाती है। हृदय में एक बीज है बेहद का, जो अंकुरित होगा। कवि कह रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन आगे बढ़ता रहे। नाव कितनी ही जर्जर क्यों ना हो, दिए की बाती बुझ क्यों ना रही हो, पीर कितनी ही शब्दहीन है, एक जंगली फूल की तरह, किसी खंडर में गूंज की तरह, आवाज की तरह, फिर भी प्रयत्न संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विजय और सफलता में क्या अंतर है? विजय और सफलता में क्या अंतर है? सफलता के चार और विजय के तीन, उसके अलावा विजय और सफलता में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है? विजय में सफलता समाई हुई, जब सफलता इकट्ठी हो जाती है तो विजय बन जाती है, और सफलता प्राप्ति और विजय, संघर्ष की अंतिम अवस्था, और दोनों भाई भाई, सफलता भाई है या बहन है? सफलता बाहर है, सफलता बाहर की उपलब्धि है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, किसी कार्य करने में सफल हुआ। विजय यदि हम कहें कि वही विद्यार्थी अपने भीतर के आलस पर उसने जीत प्राप्त कर ली, अर्थात विजय भीतर है, सफलता बाहर की उपलब्धि है। भीतर किसी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लेना। सफलता अस्थाई हो सकती है, विजय स्थाई रहती है। विजय अर्थात जीतना किसी कमजोरी को, सफलता अर्थात किसी कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, किसी कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात सफलता। विजय अर्थात भीतर एक कमी है, कमजोरी है, कोई दुर्गुण है, कोई विकार है, कोई दुश्मन है, उस पर विजयी होना, उसको हराना। तो आज के बाबा के महावाक्य बस इस एक शब्द पर है। आज का साधना का 62वां दिन, सदा अपने को विजय के तिलकधारी आत्मा अनुभव करते हो। विजय का तिलक सदा लगा हुआ है, कभी मिट तो नहीं जाता, माया कभी मिटा तो नहीं देती। रोज अमृत वेले इस विजय के तिलक को स्मृति द्वारा ताजा करो तो सारा दिन विजय का तिलक लगा रहेगा। सदा अमृत वेला अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो, और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में रखो। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की ये चेक करो। तो इस तिलक का क्या क्या करना है? सबसे पहले तो तिलक लगाओ, तिलक लगा रहे, तिलक इमर्ज रूप में रहे, तिलक को स्मृति से रिफ्रेश करो, तिलक को स्मृति से ताज़ा करो, तिलक की चेकिंग करो, तिलक मिट ना जाए। कितनी सारी बातें आ गई। तिलक को इमर्ज रूप में रहो, तिलक को रिफ्रेश करो। जब कंप्यूटर मोबाइल हैंग हो जाता है, रिफ्रेश किया जाता है, तिलक को रिफ्रेश करो, तिलक को ताज़ा करो, तिलक को इमर्ज करो, तिलक की चेकिंग करो। तिलक माया मिटा ना दे, उसको अमिट बनाओ। और तिलक को लगाओ सबसे पहले तो ये नहीं कि मैं तो हूँ ही विजयी। तो आज का होमवर्क, मस्तक पर तिलक सजा हुआ है, मेरे मस्तक पर तिलक सजा हुआ है, इस वाक्य को लिखना है 21 बार। एक चित्र बनाना है स्वयं का और उसमें तिलक देना है, ये दूसरा। और तीसरा कार्य विजुलाइज। योग करते हो तो आंखें खुली हो, पर जब विजुलाइज करते हो तो विजुलाइजेशन में आंखें बंद। तो सब विजुलाइज करेंगे, बाप दादा मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं अभी, आंखें बंद। बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। विजयी भव। एक व्यक्ति को जैसे असाधारण सा एक वरदान प्राप्त था। इंजीनियर था, कोई भी मशीन, कोई भी खराबी होती थी तो उसे ठीक कर देता था। और एक कंपनी में वो 30 साल तक निष्ठापूर्वक सेवा करता रहा और फिर रिटायर हो गया। और कुछ वर्षों के बाद उस कंपनी ने उसे फ़ोन किया और कहा कि कंपनी में एक मल्टी मिलियन डॉलर मशीन आई है पर उसमें एक खराबी हो गई है और वो खराबी क्या है हम ढूंढ नहीं पा रहे। सबको बुला लिया, सबने आजमा लिया परंतु क्या समस्या है और कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़ी अनिच्छा से उस इंजीनियर ने हाँ कहा। वो आया, सारे दिन भर बहुत बड़ी मशीन थी, मशीन को देखता रहा, आगे पीछे घूमता रहा, निरीक्षण करता रहा मशीन। शाम होते होते उसने एक चौक लिया और एक स्थान पर ऐसा निशान कर दिया, क्रॉस, और कहा कि प्रॉब्लम यहाँ है, और वो चला गया। वो जाने के बाद वो पुर्जा बदला गया और मशीन चालू हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने अपना बिल भेजा, $50,000। कंपनी ने उसे खत भेजा, आइटमाइज्ड अकाउंटिंग भेजो, ये जो $50,000 तुमने लगाया इसका क्या कहेंगे उसको, अलग अलग कैसे इतना बनाया, डिस्क्रिप्शन को वो भेजो। तो उसने डिस्क्रिप्शन आइटमाइज्ड अकाउंटिंग भेजा, चौक $1, चौक का जो निशान लगाया ना उसके $1, $49,999। चौक कहाँ लगाना है उसके, सबसे महत्वपूर्ण है समस्या कहाँ है ये ढूंढना। मन किस चीज से पराजित होता है, कौन है जो उसे हलचल में लाता है, क्या है जिस वजह से ये बेचैनी है, ये कुंठा है। ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, क्या महत्वपूर्ण है, डायग्नोसिस, निदान। खाली डायग्नोसिस हो जाना चाहिए कि ये प्रेम है या वासना, खाली डायग्नोसिस हो जाना चाहिए ये मोह है, आसक्ति है या निस्वार्थ स्नेह, क्या है। तो बाबा ने आज कहा विजयी, किस पर विजय प्राप्त करनी है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। विजयी भव, विजय का तिलक, बहुत सी बातें हैं जो इसमें सोची जा सकती है। सबसे पहला जो आज सुबह की अव्यक्त वाणी में बाबा ने ड्रिल कराई और अभी 4:30 बजे मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाबा की आवाज में जो ड्रिल सबने सुनी सुबह के अमृत वेला में, कौन सी, मन को वश में करना, मैं आत्मा मेरा बाबा। तो सबसे पहली जो विजय है वो है मन, बुद्धि और संस्कार। मनचित इस भटकते हुए मन को चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने ये तीन बातें बताई थी। चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार, इसको जीतना है। ये मन कहाँ जाता है, किस ओर जाता है, उसको उसकी वर्किंग कैसी है, विरोध कब करता है, ईर्ष्या कब होती है, उसको जलन कब होती है, बदले की कब सोचता है, बेचैनी कब होती है, विरोध कब करता है, निंदा कब करता है, स्तुति कब करता है, प्रभावित कब होता है, क्या इस माइंड की वर्किंग को समझना है साक्षी होकर, हाउ इट वर्क्स। उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको जबरदस्ती नहीं करनी है। जबरदस्ती करने गए तो विद्रोह करता है, दुखी करता है। बुद्धि और संस्कार, पुराने संस्कार, पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां, वही बार बार उभर कर बाहर आती है, गिरा देती है और भाग जाती है, और हम चारों खाने चित्त धराशाई देखते हैं कौन आया था। कुछ लोग होते हैं ना अपने दुश्मन को क्या करते, दुश्मन के साथ अकेला अगर दिखा उसके ऊपर बोरी डालते हैं, डंडे से उसको मार के भाग जाते हैं, और वो जब जागता है तो देखता है कौन है, कौन है, कौन है, कोई है ही नहीं। तो ये दुश्मन भी ऐसे ही है, आते हैं, कपड़ा डालते हैं, कंबल धुलाई करते हैं, और जब हम उठते हैं कौन है, कौन है, कौन है, और कंबल को देख निकाल के देखते तो कोई नहीं दिखता है, और थोड़ी देर के बाद ढूंढो तो वहां दो तीन लोग साधु योग तपस्या कर रहे हैं। उनको पूछो आपने किसी लोग को देखा, वही लोग है वो जो अब साधु का वेश धारण करके उसी जंगल में तपस्या कर रहे, जिस जंगल से अकेले हम गुजर रहे थे। वो कहते हमको तो नहीं पता, हमने तो देखा ही नहीं। तो इस मन को समझना, इसकी वर्किंग को समझना, उसे समझाना, अचानक उसमें इच्छा जागती है, कोई वासना जागती है, कुछ तो होता है। दूसरा है इंद्रिय। दूसरी विजय कौन सी है, हमें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी। लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, कुछ लिखी है यहां बस। हर एक मुरली में बाबा ने क्या कहा था, कौन सी मुरली थी वो, एक एक इंद्रिय क्या है, मकड़ी का जाल है, छोटी सी आंख पर बुनती कितना बड़ा जाल है, ऐसी एक मुरली है ना। बाबा ने उसमें कहा था हप कर लो अपने जाल को, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। और सबसे कठिन इंद्रिय कौन सी है जिस पर विजय प्राप्त करनी है, आंखें तो है, उससे भी कठिन स्वाद, 6482 की अव्यक्त वाणी। जीभ में हड्डियां नहीं है पर हड्डियां तोड़ती जरूर है, तुड़वाती भी है। इंद्रियों को जीतना है, किस इंद्रिय ने धोखा दिया। अगला विकार, अगला आलस, अपने आप आलस आ जाता होता है ना, बोरी डालता है, पिटाई करता है और भाग जाता है। कब आता है, कैसे आता है पता ही नहीं चलता, पर आता तो है। कब नींद लग जाती है पता नहीं। कुंभकर्ण के बिछड़े हुए रिश्तेदार सब यहीं पर हैं। और कभी कभी हम भी बन जाते हैं सब। नींद, आलस, अलबेला। अगला भय। अपने भीतर छिपे हुए भय को पहचानना है सबसे पहले तो। कौन सी चीज से भय? भय, बेचैनी, असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरी कौन देखभाल करेगा? कितना सोचते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मित्र, संबंधी, बच्चे, डिपार्टमेंट, सेंटर, इन सब का क्या होगा? असुरक्षा, भय, बेचैनी, यही वास्तविक शत्रु है। अगला कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। सब कुछ कर लिया और बार बार पराजय हो तो क्या आ जाती है? फ्रस्ट्रेशन आता है, क्लांत होता है, हो जाता है हृदय, थकान आ जाती है। कितनी बार प्रयत्न करें, सब कुछ तो कर लिया, उसके बाद में भी पराजय, तो आत्मा थक जाती है। इसे भी पहचानना है और जीतना है। निगेटिव वेस्ट, भीतर कितना निगेटिव भरा है। हर व्यक्ति जो बोलता है वो परिचय देता है भीतर के, उसके अंतर का। अगर जहर निकल रहा है तो भीतर कितना जहर भरा है। अगर अमृत बरस रहा है तो भीतर कितना अमृत होगा। क्योंकि हम, हमारे बोल किसका परिचय? हमारे ही भीतर का। व्यर्थ गिल्ट कॉन्शियसनेस, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैं अपराधी हूं, ये भी पुरुषार्थ नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। अपराध भाव, इसको आइडेंटिफाई करना है। और आगे बढ़ जाना है। डिप्रेशन, उदासी, एक अवसाद है। खिन्नता, बहुत गहरा दुख, इसमें दुख भी एक जोड़ दो, सॉरो। किस बात का दुख है पता नहीं, पर है जरूर। अज्ञात सा दुख है। उस दुख, यहां तक पहुंच गए, डायग्नोसिस मेडिकल में नैरोड डाउन किया जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये हो सकता है। यहां पर भी ऐसा ही, जो निदान है उसको रूल आउट करना होता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं लग रहा है, हाँ ये आलस तो नहीं लग रहा है, कुछ और ही है, ये क्या है पता नहीं, थकान थकान सी रहती है बस। शाम होते ही पूरे शरीर में थकान, जान ही नहीं रहती, चल ही नहीं सकते वहां तक। थोड़ी सी सेवा करते हैं तो थकान आ जाती है, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, क्या है ये? मन में कोई उदासी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, फिर थकान कहां से आ रही? हर एक को अपना डायग्नोसिस खुद करना पड़ेगा, सेल्फ डायग्नोसिस। ये कुछ तो है, ये जो है वो नॉर्मल नहीं है बस, ये एबनॉर्मल है। मेडिकल में एक बीमारी है जिसको कहते हैं बेल्स पाल्सी। देखे ये पेशेंट देखे होंगे, इसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसा मुंह टेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति वो फुला नहीं सकता, खाते खाते भोजन एक तरफ चला जाता है। कई लोगों को होता है, यंग लोगों को होता है, कितने सारे लोगों को हो जाता है। महीने में एक पेशेंट तो आता ही है, बैठे बैठे कुछ नहीं, और ठीक भी हो जाता है एक हाथ दो महीने में, वायरल होता है। तो बेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये ढूंढा था, हमारे चेहरे में सात नसें हैं, सेवन नर्व्स, उसमें जो सेवन नर्व, सात नंबर की जो नस है, फेशियल पाल्सी, इसको कहते हैं फेशियल पाल्सी, जिसमें कई लोगों को आंख बंद नहीं होती और आंखों से आंसू बहते हैं, इसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। खाना खाते हैं तो आंसू आते हैं, ये बीमारी है। तो बेल्स पाल्सी, तो ये जो बेल नाम का व्यक्ति था, तो फेशियल पाल्सी के कई सारे कारण हैं। जैसे यूजुअली जब किसी को लकवा होता है तो लकवे के साथ ये भी होता है, इधर का भाग पैरालिसिस होता है, इधर का मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसे इधर की नसी पैरालिस होगी तो इधर दूसरी तरफ वाला खींच लेता है उसको, खाना खाते खाते यहाँ खाना जमा होता है। ओल्ड पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में जब कारण होते हैं तो उसको कहते हैं फेशियल, पर जब कोई कारण ही पता नहीं चलता है कि क्या कारण है, तब उसको कहते हैं बेल्स पाल्सी। तो बेल नाम का व्यक्ति जो था उसने ये ढूंढा, तो उसने अपना ही नाम उसमें रखा, ये बेल्स पाल्सी है, मतलब फेशियल पाल्सी, जिसका कोई कारण पता नहीं, ढूंढ नहीं पाए कारण, इडियोपैथिक। पर जब भी किसी को बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी होने लगी तो लोगों ने कहा यह बेल्स पाल्सी है, अरे कारण तो ढूंढो। तब महात्मा बेल्स ने एक वाक्य जारी किया था, एवरीथिंग दैट पाल्सीज इज नॉट बेल्स, जिस जो भी पाल्सी होती है उसको बेल पाल्सी मत कहो, एवरीथिंग दैट पाल्सीज इज नॉट बेल्स, अरे कारण तो ढूंढो। वैसे हमारे मन में जो तरंगे उठती है उसको नाम देना कई बार बहुत मुश्किल है कि ये क्या है, क्या इसको काम विकार कहें, ना काम विकार तो है नहीं है, क्या इसको शरीर का आकर्षण कहें, नहीं वो तो लग नहीं रहा है, क्या इसको किसी को इम्प्रेस करना कहे या अपने शरीर से आसक्ति कहे, क्या है ये हिसाब किताब। मन में अजीब सी तरंगे उठती है, उसको बस देखना है, कई बार उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना है, वो आती है और चली जाती है, अनित्य है। जैसे जेन मास्टर बोकोजू एक था, उसके शिष्य थे, एक दिन वो सुबह सुबह उठा और अपने शिष्य से बुलाया, इधर आओ, मैंने एक स्वप्न देखा है, क्या तुम उसकी व्याख्या करोगे। गुरु शिष्य ने कहा गुरु जी आप जाके मुंह धोके क्यों नहीं आ जाते। ठीक है बाद में करते हैं, वो मुंह धोके आया गुरु जी, फिर दूसरे शिष्य जा रहा था वहां से, उसको बोला इधर आओ, मैंने रात में एक स्वप्न देखा, क्या तुम उसकी व्याख्या करोगे। उसने कहा गुरु जी अभी अभी आपने मुंह धोया ना, अभी आप थोड़ा ग्रीन टी ले लो। फिर बोकोजू ने अपने शिष्यों से कहा बहुत अच्छा मैं खुश हूं, अगर तुम लोगों ने मेरे स्वप्न की व्याख्या की होती अभी तुमको आश्रम से बाहर फेंक दिया होता। कई सारे स्वप्न तो व्यर्थ होते हैं, उनकी क्या व्याख्या करनी है। इसलिए शिष्य ने सही कहा, स्वप्न देखा ना जाओ जाके मुंह धोके आओ, व्यर्थ है इसलिए। पर हाँ जो विचार परसिस्टेंट आ रहा है बार 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 बार, घुसपैठी विचार जो घुसता है बार बार और डिस्टर्ब करता है, उसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो विकार का रूप धारण करेगा, धीरे धीरे डिस्टर्बेंस का रूप धारण करेगा। तो किस पर विजयी होना है, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, और एक है प्रकृति। प्रकृति हमें प्रभावित ना कर पाए, सर्दी गर्मी ठंडी जो भी है, तो ये कुछ बातें लिखी है जिस पर हमें क्या बनना है, विजयी। विकारों में तो बहुत सारे आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो है ही, उसमें ईर्ष्या है, उसमें जलन है। कोई हमसे आगे बढ़ता है तो क्या होता है, क्या होता है वही समझ नहीं आता, उसको कोई शब्द ही नहीं है। ईर्ष्या कहे तो वो तो हमारे समान के खिलाफ है, हमारे इज्जत के खिलाफ है। हम क्या नाम दें उसको, अनाम सा है वो, पर अस्थिरता है उसमें और बेचैनी है। उसको भी देखना है, मुखौटा खुशी का है सब है, परंतु अंदर कुछ और बाहर कुछ और। खलील गिब्रान की कविता है जिसमें एक माँ है बेटी है, इतने प्यार करते दोनों एक दूसरे को, बहुत प्यार करते दोनों ही रहते और कोई नहीं है, बहुत ही प्यार करते, बहुत एक दूसरे का ध्यान रखती है, पर दोनों को एक बीमारी है रात में चलने की, सोमनैम्बुलिज्म। रात में दोनों कब चल के कहाँ पहुँच जाती है दोनों को भी पता नहीं चलता। एक रात सुबह सुबह दोनों उठती है और दोनों बगीचे में जाके बैठ खड़ी हो जाती। वो बेटी अपनी माँ को गालियाँ देना चालू करती है, तुम्हारी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारी वजह से मुझे काम करते रहना पड़ता है, इतनी गालियाँ देती है। नींद में है दोनों, अंदर का निकल रहा है बाहर, और माँ अपनी बेटी को गालियाँ देती है, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ मेरे जीवन में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब से तुम आई मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तुम आई तो सारा ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ चला गया, मेरा अपना उन्नति कुछ भी नहीं हो पाई, मेरी अपनी ब्यूटी वगैरह वगैरह। और अचानक मुर्गा बांग देता है, सुबह का समय है और नींद टूटती है। बेटी कहती है माँ तुम यहां कैसे आई, तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही, ये लो शॉल ओढ़ो। माँ कहती है बेटी तुम यहां कैसे आ गई, एकदम प्यार, एकदम गहरा प्यार, जो मतलब रूटीन में था, फिर वो क्या था जो रात में निकला और जो नींद में निकला, वो भीतर था। बहुत गहराई में, जहां प्यार प्यार दिखाई देता है गहराई में बहुत नफरत रहती है। जैसे किसी ने हम पर बहुत उपकार किए, हर हमेशा उपकार ही करते हैं। साधारण गणित कहता है उसके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, उसने पैसा दिया, घर दिया, सब दिया, मतलब उपकार ही करते आ रहा है, पर अंदर से एक नफरत भी है। क्यों? हम उसके अधीन है, मुझे भी बदला लेना, एक दिन ये भी गरीब हो तो मैं इस पर उपकार करूंगा, ये भाव भी पनप रहा है सूक्ष्म में। तो मन इतना आसान नहीं है, बहुत सूक्ष्म परते हैं उसकी, अभी अभी कुछ, एक ही व्यक्ति के प्रति हमारी 100 प्रकार की भावनाएं हैं, और सारा परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, अलग अलग जन्मों का सब संग्रह हो रहा है, 5000 साल की संग्रहित भावनाएं यहाँ है अंदर दबी पड़ी है, कब क्या निकलती है पता ही नहीं चलता। तो आज का होमवर्क और एक दो और चीजें, दूसरों के हृदय को जीतना, और उससे भी बड़ा परमात्मा हृदय को जीतना, ये भी दो अलग कार्य है। तो विजयी भव में आज क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है, किस पर, स्वयं पर, स्वयं के मन में छिपे हुए विकारों पर। पर वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, पर श्वास के सहारे, संवेदनाओं के सहारे, योग के सहारे, विजुलाइजेशन के सहारे, मूल्य अध्ययन के सहारे, धीरे धीरे हम अंतर मन की गहराई में पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं क्या होता है, तो उसके अंदर हलचल उत्पन्न होती है। तो आज के तीन कार्य है, पहला कार्य है इस वाक्य को कितनी बार लिखेंगे, 21 बार, कौन सा, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक सजा हुआ है, पहला। दूसरा, एक चित्र बनाएंगे जिसमें विजय का तिलक लगा हुआ है मस्तक पर। और तीसरा कार्य, विजुलाइज करेंगे कि बाप दादा आए और मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं, चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। रघुबीर स्वयं आकर राम क्या कर रहा है, हमें तिलक दे रहा है, विजयी भव, तुम विजयी आत्मा। पर और एक चीज सूक्ष्म, ये भी समझना है, ये ड्रामा हार जीत का खेल है, तो इसमें हार भी होगी। और ये ना समझो कि हमारा हर स्वप्न पूरा होगा, कुछ स्वप्नों को टूटना ही है और टूट नहीं चाहिए। ये ना समझो कि जो एग्जाम दोगे वो सब पास ही होंगे। इस ड्रामा में विजय पराजय का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ये रिजल्ट है। हर पराजय जीत का द्वार है। सोचते तो हम हमेशा ऐसा है कि हमने बहुत अच्छा किया, पर ऐसा होता नहीं। और कुछ स्वप्नों को तो टूटना ही चाहिए, हर इच्छा पूरी थोड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। अहंकार को चोट तो लगनी चाहिए। तो ये रिजल्ट है अभी तक का, अभी एग्जाम जारी है, 96 to 100% मिलने वाले अभी तक केवल 335 लोग हैं, उसमें से मधुबन निवासी अभी तक कोई नहीं 100 वाला। ये तो रिजल्ट है। तो कितने लोगों ने दी अभी तक, ये अभी तक, अभी 10 बजे तक पेपर है, 2271। तो जीवन भी एक परीक्षा की तरह है, पढ़ाई करो, एग्जाम दो और फिर देखो, अगर हार गए तो उदास नहीं होना है, फिर पढ़ाई करो, फिर दो, जीत गए तो ठीक। जीवन में सब चाहिए, नहीं तो हम स्थित प्रज्ञ योगी कैसे बनेंगे। स्तुति स्तुति हो रही है तो निंदा का मजा कब चखोगे। सफलता ही सफलता मिल रही है तो असफलता का क्या होता है, हाउ टू हैंडल, वो कैसे पता चलेगा। लाभ ही लाभ हो रहा है तो हानि से क्या होता है ये कैसे पता चलेगा। हानि भी तो होनी चाहिए, नुकसान भी तो होना चाहिए। तीन वाक्य है, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा क्या करना है, होप किसके लिए करना है, बेस्ट, ट्राई योर, पूरा जी जान से मेहनत करनी है और अल्टीमेटली जो मिलता है फिर उसको ले लेना, फिर उसमें संतुष्ट रहना है, फिर उसमें ये सब नहीं करना है, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो मिल गया, मिल गया, बस फुल स्टॉप, अब आगे तुरंत दूसरी तैयारी चालू। जैसे ही एक परीक्षा दी और उसमें कुछ सफलता प्राप्त हो गई, जीवन में भी फुल स्टॉप लगाओ और दूसरी तैयारी चालू कर दो, नेक्स्ट, इसको भूल जाओ, अब और आगे और आगे और आगे। तो ये आज के तीन होमवर्क है, आज की कविता, देह संग का भस्मा सूर। नवरात्रि कब, कल से चालू हो रही, और कल भी दिया है किसी को ना, कहा है? नहीं है। असंग की आरती,
ओम शांति। देह संग रही आत्मा खुद को भूली, पाप कर्मों में डूबी, 84 जन्मों से आत्मा देह में रही, देह संग में रही, देह के रिश्तों में बंधी, 21 जन्म आत्मिक स्थिति रही, 63 जन्म ऐसी फंसी, विकारों ने किया राज्य। जब आत्मा को ज्ञान मिला, परमात्मा प्राप्तियों का हुआ पहचान, अपने अंदर की शक्तियों का हुआ उदय, आत्मा के दो संस्कार, दैवी और आसुरी, संस्कार वश होकर सुख और दुख अनुभव करती, जब संस्कारों का ज्ञात हुआ, सत्य और असत्य का हुआ युद्ध, जब मोहिनी रूप धरे भस्मासुर का हुआ अंत, आत्मा विकारों से मुक्त हुई, आत्मा खुशियों से खिल उठी। ओम शांति।
इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर जर ही सही लहरों से टकराती तो है।
एक चिंगारी कैसे ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।
जिंदगी कठिन सही
पर धड़कती तो है। खंडर के हृदय सी एक जंगली फूल सी आदमी की पीर गुण।